नमस्कार शिक्षार्थी और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थी और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। जी हाँ, आपका ये लेसन नंबर 6 है और इस लेसन पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगो जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज।
नमस्कार शिक्षार्थियों, हम लाइब्रेरी साइंस के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका लेसन 6 मॉड्यूल 2 में से टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, की कितनी सारी जो सूचनाओं के स्रोत हैं, कितनी तरह के होते हैं। इसमें हम ज़्यादातर इसके बारे में बात करेंगे, कितनी तरह के सूचनाओं के स्रोत हैं और हम इन सभी जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जितने भी सोर्सेज हैं, इन्हें हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, ज़्यादातर कंटेंट के वजह बेस पे या फॉर्म की वजह पे, मतलब इसके अंदर क्या कंटेंट है उस बेस पे भी होता है, और ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है। किताब है तो किताब की तरह ही होगा, या अगर पीरियोडिकल है तो पीरियोडिकल की तरह, या कोई और डॉक्यूमेंट है उसे किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि लाइब्रेरी में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से हमारे पास ऑर्गेनाइज करना इन इंफॉर्मेशन सोर्सेज को बहुत ही जरूरी है। और हम इस लेसन में ये भी बात करेंगे कि हमारे जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, इनको किस बेस पे हम लोग कंटेंट पे हैं, यूटिलिटी पे हैं, और किस तरह से हम इन लोग इनका इन सोर्सेज को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी होंगे। इस लेसन में हम लोग शुरुआत पे हम करेंगे इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में बात, इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि पीरियोडिकल हैं और सीरियल्स हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, जर्नल और मैगजीन है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, पर इनको जानना बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे कि जो रिपोर्ट्स होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसी लेसन में सेकेंडरी पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि पिछले लेसन में हमने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं। इसमें हम बात करेंगे सेकेंडरी पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, बिब्लियोग्राफी क्या होती है, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे मिलते होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होती हैं, बुक और मैन्युस्क्रिप्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, पैम्पलेट और एक बुक में क्या डिफरेंस है, और कितनी तरह कितने पार्ट्स होते हैं एक किताब के, ये भी हम समझेंगे। और हम लोग काफ़ी ये भी देखेंगे, और कंटेंट से, वॉल्यूम्स से, किस तरह से बुक्स को कैटेगराइज किया जाता है, जैसे अगर सिंगल वॉल्यूम बुक है तो, और मल्टी वॉल्यूम बुक है तो, ये किस बेस पे हम लोग इन्हें कैटेगराइज करते हैं। फिर हम थोड़ा सा जानेंगे टर्शियरी सोर्सेज क्या होते हैं, उनमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, जो टर्शियरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। सबसे पहले हम जानकारी जानेंगे किसके बारे में, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अब आपको थोड़ा बहुत मालूम भी है कि कौन से होते हैं, जैसे जिस पे कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती, जैसे आप खुद कुछ लिख रहे हैं या आपको कहीं से कोई डाटा मिला है, आपने उस डाटा को इंटरप्रेट करा, उस डाटा को मैंने आपको बताया 100 बच्चों में इतने बच्चों ने इतना हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया है, उस सारे डाटा को मैंने आपको पास नंबर्स दिए, पर आपने उसे इंटरप्रेट करके लिखा कि 100 में से 50% लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं, 40% लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले, 10% लोग उर्दू पढ़ने वाले, इस तरह से डाटा को इंटरप्रेट करना, ये भी प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में ही आता है। या अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन हो, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज़ को कि ये किस तरह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे एडमिशन्स में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, या रिजल्ट्स हमने जब अपने सिलेबस को डिवाइड किया, अलग अलग तरीकों से हमने एग्ज़ाम लिया बच्चों को, तो क्या फ़र्क पड़ा उससे, तो जो भी हम डॉक्यूमेंट उसके बाद निकालेंगे, इस ऑब्जर्वेशन के बाद जब हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स किस में आते हैं? ये हमारे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं। यूजुअली देखा जाए तो प्राइमरी सोर्सेज जो हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं इसमें, क्योंकि हर तरह की रिपोर्ट आपको आएगी, न्यूज़पेपर आएगा, मैगजीन आएगा, पीरियडिकल आएगा, हर तरह का डिसर्टेशंस हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, पेटेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ट्रेड प्रोडक्ट बुलेटिन्स हैं। जो भी जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उस तरह का डॉक्यूमेंट अपना पब्लिश करते हैं, पर ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें हम प्राइमरी सोर्सेस ही कहते हैं ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये हमारी एक बेसिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़रूर है। तो इसमें हम लोग पीरियडिकल्स क्या होते हैं, पीरियडिकल्स को प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्यों कहा जाता है? आप देखेंगे पीरियडिकल का मतलब है पीरियड, किसी एक पीरियड में इसका छपना, एक हफ्ते में, 15 दिन में, या मंथली या क्वार्टरली या 3 महीने में, तो इसका एक पीरियड तय किया जाता है। जब हम एक कोई पीरियडिकल हमारी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है कि ये पीरियडिकल हम छपाना चाहते हैं, ये मैगजीन है, ये न्यूज़पेपर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, इसकी हम पीरियडिसिटी पहले ही तय कर लेते हैं। और जब ये हर पीरियड में, हर पीरियड के बाद छपता रहता है और सालों साल चलता रहता है, इसका कोई इंडेफिनिटली ही चलता है ये, और इसमें जो है टाइटल में हम कोई चेंज नहीं लाते हैं, टाइटल सेम एज इट इज ही रहेगा और उसी टाइटल में इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, और जिस हिसाब से आपने डिसाइड किया होता है ये उसी पीरियडिसिटी के हिसाब से। कभी कभी कोई मैगजीन जर्नल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि पहले वो एवरी मंथ आप या आप वीकली आपको मिलता था, फिर वो पीरियडिसिटी अपनी चेंज भी कर सकते हैं, उससे फोर्टनाइटली कर लिया, 15 दिन में एक बारी कर लिया, महीने में एक बारी कर लिया, ये सब आपके अपने ऊपर डिपेंड होता है, इसमें आपका अपना फ्रीडम होता है। तो इन सब को हम जो इसमें ऑथर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके आर्टिकल्स ही अलग अलग होंगे। एक पीरियडिकल के आर्टिकल में हर कोई कंट्रीब्यूट कर लेता है, जैसे कि अब आप कोई किताब लिखनी हो तो किताब तो कोई एक सिंगल पर्सन भी लिख सकता है, या चैप्टर्स उसमें अलग अलग लोग अलग अलग लिखते हैं। तो पीरियडिकल में हम लोग डिफरेंट ऑथर्स को बुलाते हैं, उनके आर्टिकल्स को कंपाइल कर लेते हैं, तो एक जर्नल का शेप दे देते हैं इसे। सीरियल जो है वो कोई पब्लिकेशन सक्सेसिवली, जैसे भी मैंने कहा अभी आपको, इसका एक पैटर्न बनाना पड़ता है और इनडेफिनेटली ये पैटर्न चलता रहता है जब तक आपका मैगजीन चलेगा, अनलेस एंड अनटिल आप इसमें कोई चेंज लेके आते हैं, कोई सीरियस चेंज होता है तो आप नाम बदलना चाहते हैं, वो आपको नोटिफाई करना होता है कि हमने ये इसको बंद कर दिया है, अब हम नए सीरियल से चलाएंगे, नए उससे चलाएंगे। इसमें रिसर्च पीरियडिकल्स, ट्रेड बिजनेस पीरियडिकल, न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर्स, पॉपुलर मैगजीन्स, एल्मनैक्स, ईयर बुक्स, एनुअल रिव्यूज, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल्स आते हैं। इन सभी पीरियडिकल्स में ये सब इंक्लूडेड होते हैं। मल्टी वॉल्यूम बुक्स और इंसाइक्लोपीडियाज जो हैं वो सीरियल्स में नहीं आते हैं। ये सारे जिनका मैंने नाम अभी बताया आपको, ये सभी सीरियल्स का एक पार्ट है, क्योंकि ये रेफरेंस सोर्सेस हैं हमारे पास, इन्हें हर समय कंपाइल किया जाता है डिफरेंट पीरियड्स पे, ये नए नए आते रहते हैं तो इन्हें हम रेफर करते हैं ज़्यादातर, एंड टू एंड इन्हें नहीं पढ़ते हैं हम। जैसे बुक को एंड टू एंड पढ़ा जाता है, एक अगर आपने कोई भी नॉवल लिया है, कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो उसको आप एंड टू एंड पढ़ते हैं, पर यहाँ पर आपको क्या होता है, ये जहाँ ज़रूरत हो आपको, जितनी ज़रूरत हो इन्फॉर्मेशन की आप उसे उतना ही पढ़ते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपनी नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई चीज़ जानने के लिए हम लोग बुक से पहले कोशिश करते हैं, हम कोई मैगजीन देख लेते हैं, कोई जर्नल देख लेते हैं, उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, ताकि हम लोगों को जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो जिसने रिसर्च की है या जो भी डेफिनेटली अगर कोई लिख रहा है तो हमारे पास ये पहला, जो बुक को लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, यहाँ पर कि देखा जाएगा आपको जर्नल और मैगजीन्स जो हैं वो जल्दी छप जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है जर्नल्स और मैगजीन्स को लाने के लिए, क्योंकि बुक को छापने में कई बार सालों लग जाते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो वहाँ फाइनली पहुँचती है बुक फॉर्म में, वो वहाँ तक ऑब्सोलीट भी हो जाती है कई मामलों में, और यहाँ पर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और करंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पीरियोडिकल्स में जो टाइप्स हैं वो है स्कॉलरली पीरियोडिकल, ट्रेड बिजनेस पीरियोडिकल है, पॉपुलर पीरियोडिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, अलग अलग तरह के हैं। अब तो स्कॉलरली पीरियोडिकल हम देखा जाए, जैसे कि नाम ही आप समझ पा रहे हैं कि नाम ही है, वो ज़्यादातर जो है लर्न्ड सोसाइटीज के लिए है, R&D ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, या कोई भी आपका कमर्शियल पब्लिशर उसे रिप्यूट के लिए, पर इसका जो है ज़्यादातर स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं इसमें, इसका बहुत ज़्यादा एकेडमिक वैल्यू है। इन्हें हम यूजुअली जनरली कैसे जर्नल्स के नाम से कहा जाता है, और ये पब्लिश होते हैं रिसर्च फाइंडिंग्स पे, और अगर आपने कोई रिसर्च फाइंडिंग की भी है, जब आप सबमिट करेंगे आपका आर्टिकल, पर वो आर्टिकल पीयर रिव्यू हो जाएगा, वो देखा जाएगा वेदर जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही दी है नहीं दी है, उसे रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद एक और ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो उसे इवैल्यूएट करेगा, मतलब ये कई प्रोसेस से निकलता है, तब ये एक एकेडमिक पीरियोडिकल माना जाता है। सो दैट कि जो आप कल को अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी यूज कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, वो पीयर रिव्यूड इन्फॉर्मेशन है, वो थ्रू मेनी स्टेप्स आया हुआ है। इट इज़ नॉट दैट यू सेड समथिंग, यू सॉ समथिंग एंड यू रोट इट डाउन और आपका छप गया और वो यूज हो जाएगा, नहीं, इसमें अपने स्टेप्स काफी सारे होते हैं, वो स्कॉलरली पीरियोडिकल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ज्यादातर इन स्कॉलरली पीरियोडिकल्स को इनका ज्यादा पर्पस क्या है कि ओरिजिनल रिपोर्ट जो है, जो सिग्निफिकेंट कोई भी रिसर्च हुई है किसी भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में है, वो इसे छापता है। अगर कोई रिसर्च हुई है, लेटेस्ट रिसर्च हुई है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक दिया गया है, तो वो इन्हें छापते हैं। तो आपका पर्पस ये हो जाता है, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक के बारे में आपको किसी भी जर्नल में मिल जाती है, वो भी आपका जो स्कॉलरली पीरियोडिकल होता है। ये देखा जाता है, ये सबसे एक अच्छा बेस्ट ही सोर्स माना जाता है करंट इन्फॉर्मेशन का। इससे ज़्यादा आपको करंट और वैल्यूएबल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलना मुश्किल है कहीं पर भी। अब आप देखेंगे कि अब प्रिंट से ज़्यादा ऑनलाइन जल्दी छप जाता है, मतलब छपना तो प्रिंट हुआ, अगर आपने जब तक आर्टिकल्स बन गए, आपके पेयर रिव्यू हो गए, सब कुछ हुआ, जब तक ये प्रिंट होने में टाइम लगता है, तब तक आपका जो है ऑनलाइन एक्सेस मिल जाता है आपको, और ऑनलाइन आप इसी चीज़ को कई दिन पहले ही पढ़ पाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है आपके लिए इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का। जो भी ये आर्टिकल्स लिखते हैं वो ज़्यादातर कौन होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, या एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के, जो कि आपको मोस्टली टेक्निकल ही दिखेंगे आपको इस तरह के आर्टिकल्स, जबकि आपको उन लोगों की बैकग्राउंड जिन्हें की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। कभी कभी तो आप देखेंगे कि एकेडमिक्स में, एजुकेशन में भी आपको टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, तो ये उस तरह के आर्टिकल्स हो जाते हैं जिसमें लोगों ने काफ़ी सारी रिसर्च की होती है, तो जाके ये एकेडमिक और स्कॉलरली पीरियोडिकल में इसे आता है। ये ज़्यादातर ये वाले जो पीरियोडिकल्स होते हैं, इनमें हम एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं। हर इश्यू जो है कंटिन्यूसली नंबर्ड होता है, जैसे कि अब हमारे पास एक साल का एक वॉल्यूम हम निकालते हैं, मगर 12 इश्यूज़ हैं, एक से जनवरी से शुरू हुआ दिसंबर तक आपको 12 इशू चलेंगे, या अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो इशू नंबर बदलता रहता है हर महीने, जिस तरह की भी पीरियोडिसिटी हो आपके जर्नल की, मैगजीन की है। जो स्कॉलरली आर्टिकल्स जो भी हैं, ज़्यादातर इनमें छोटी सी समरी दी जाती है, डिस्क्रिप्टिव समरी, ताकि जिसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है जहां हम इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा कंडेंस कर लेते हैं, ताकि जो आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल के ऊपर आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा पहले. जब आप कोई भी पेपर लिखते हैं, कहीं भी भेजते हैं, उससे पहले ही आपको एक एब्स्ट्रैक्ट लिख के भेजना पड़ता है. एब्स्ट्रैक्ट को देख के वो लोग ये करते हैं डिसाइड कि वेदर दे वॉन्ट योर पेपर और नॉट. उन्हें एब्स्ट्रैक्ट से ही पता चल जाता है कि इस पेपर की क्या वैल्यू रहेगी, इस पेपर का आउटकम क्या है और ये किस बेस पे हम पेपर लिख रहे हैं. तो जो एब्स्ट्रैक्ट है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है. कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि मेन पेपर कोई भी नहीं पढ़ता है, एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने से ही उन्हें पता चल जाता है वेदर दे वॉन्ट टू रीड इट फर्दर और नॉट, ताकि वो पूरा जो है 20 पेज का 10 पेज का आर्टिकल है उन्हें पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें इस पे टाइम खर्च करना चाहिए या नहीं. तो जो एब्स्ट्रैक्ट है आर्टिकल का वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वहां पर. तो आर्टिकल जो भी है उसमें जिसने भी लिखे होते हैं आर्टिकल, जो भी अपना आर्टिकल देता उसका ऑथर का नाम और एड्रेस जरूर इसमें आ जाता है. और सबसे नीचे जो स्कॉलरली पीरियोडिकल्स होते हैं इनके एक फुटनोट होते हैं या बिब्लियोग्राफी आखिर में हो जाती है उस सब अपने पेपर के पीछे, जिसमें कि ये सब वो चीजों के बारे में बताते जो जो चीजें इन्होंने कंसल्ट की होती है. बिब्लियोग्राफी बनाने से या फुटनोट्स में नीचे लिखने से ये बताते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से क्या पढ़ा, क्या यूज किया, उन सबको भी इन्फॉर्मेशन, उन वो जहां जिस जिस चीज को इन्होंने कंसल्टेशन की होती उनको भी साइटेशन मिल जाती है कि मेरे ये आर्टिकल को यूज किया गया, पढ़ा गया और फिर इसे दूसरे किसी आर्टिकल ने अपने आर्टिकल में यूज कर लिया. इस तरह से हमारे पास बहुत सारे जर्नल्स होते हैं लाइब्रेरीज में, जैसे कि हमने आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है आपको, इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी. इसमें ज्यादातर देखा जाए, क्योंकि इसका नाम ही एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी है, ज्यादातर इसमें जो है रिसर्च के आर्टिकल्स होते हैं जो रिसर्च लाइब्रेरीज रिसर्च लैब्स में होती है, उससे रिलेटेड जो पीएचडी होती है या एमफिल करते हैं लोग उससे पहले वो उनमें से पेपर्स भी छापते हैं, वो पेपर्स भी इसमें आते हैं. या टाइटल के हिसाब से भी जो ऑर्गेनाइजेशन है निस्केयर है वो पेपर्स मंगवाते हैं जिन पेपर्स को यूज किया जाता है उसको बनाने के लिए, आर्टिकल्स को बनाने के लिए. अब हम इसके बाद जो है हमारा ट्रेड एंड बिजनेस है. अभी तो हमने बात की, वो थे सारे हमारे पास एकेडमिक से रिलेटेड जो था पीरियोडिकल. अब जो हम बात करेंगे वो है ट्रेड एंड बिजनेस पीरियोडिकल. ट्रेड एंड बिजनेस में आप देखेंगे व्यापारिक और व्यवसायिक को, ये दोनों का नाम ही ऐसा है. कौन ये इन्हें पब्लिश करेगा? जिनको लग रहा है कि हम इसको पब्लिश करने से, लोगों तक पहुंचाने से ये हमारे ट्रेड में काफी इजाफा करेगा, काफी बढ़ोतरी हो जाएगी हमारे ट्रेड में, अच्छा हमारा लोगों तक पहुंचने का एक एडवर्टीजमेंट भी हो जाएगा, काइंड ऑफ जो इनोवेटिव आइडिया हम क्रिएट कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचने का एक आसान तरीका हो जाता है. इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप ज्यादातर देखेंगे इस तरह के जो आर्टिकल्स ट्रेड से और बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, कार से रिलेटेड होंगे, मशीन से रिलेटेड होंगे. हर कोई इंडस्ट्री अपनी उस जो उनकी नई इनोवेशंस होती हैं, नई ट्रेंड्स होती हैं, न्यूज होती है उनको, या कोई स्पेशल बिजनेस में इनोवेशन आई है तो उसको वो इसी मैगजीन में जरूर डाल देते हैं. ये इंडस्ट्री ट्रेंड्स जो है ज्यादातर प्रोडक्ट्स और टेक्निक्स के बारे में होती कि क्या प्रोडक्ट है हमारे पास, इसमें हमने क्या चेंजेस लाए हैं, किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं और कितना ये आपको सेव करके दे देगा. मेनी चीजें जो भी बहुत ज्यादा सारी चीजें जो भी होती है जो कि लोगों के हित की होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसे पढ़ते हैं. पर इनमें जो ज्यादातर होता है इसमें एडवर्टीजमेंट्स बहुत होती हैं, क्योंकि ये हमारे वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा जाता है, इसको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ा जाता है कि हमें प्रोडक्ट लेना है नहीं लेना है, तो इसमें काफी सारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं. इनका जो पेपर ज्यादातर यूज होता है ग्लॉसी पेपर इसमें यूज करते हैं, और जो पिक्चर्स जो भी डालते हैं आप देखोगे, अगर आप कोई भी कार की मैगजीन उठाएंगे तो जब तक आपको वो ग्लॉसी और एकदम बहुत कलर नहीं दिखेगी तो आप उस कार को देखना पसंद नहीं करोगे. आपको कलर्स का एक अट्रैक्शन हो जाता है. वहां पर अगर आप देखोगे स्कॉलरली पीरियडिकल में, वहां आपको कंटेंट से रिलेटेड ज्यादा इंटरेस्ट होना है कि कंटेंट कैसा है, कैसी रिसर्च हुई है. यहां पर आपको एडवर्टीजमेंट्स और ये सब, इन सब चीजों का भी इंटरफेरेंस रहता है. और पेपर कैसा है, कलरफुल इंस्ट्रक्शंस है, ये सब चीजें है. इसमें ज्यादातर देखा जाए जो लैंग्वेज लिखी जाती है, बहुत हाईफाई लैंग्वेज नहीं लिखते, आर्टिकल्स ज्यादातर सिंपल होते हैं. और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड और ट्रेड से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं वो ज्यादातर यूज हो पाती हैं. और जनरल जो कॉमन लोग हैं, क्योंकि कॉमन में गाड़ी खरीदने कोई भी जा सकता है, वॉशिंग मशीन खरीदने कोई भी जा सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक सिंपलर बनाया जाता है ताकि ये हर कोई इसे पढ़ सके, समझ सके. तो इसमें जो हमने आपको एग्जांपल दिया है, हमने दिया है इंडियन टेक्सटाइल जर्नल. तो टेक्सटाइल में ज़्यादातर टेक्सटाइल जो भी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड होगा. तो इसे कलरफुल बनाना, ब्यूटीफुल बनाना, इसमें एडवर्टीजमेंट्स डालना, ये सब चीज़ें हम ज़रूर करते हैं. ये हो गया हमारा ट्रेड एंड बिजनेस पीरियडिकल. उसके बाद हम जो बात करेंगे पॉपुलर पीरियडिकल. पॉपुलर पीरियडिकल्स वो हैं जिन्हें हिंदी में हम कहेंगे लोकप्रिय पत्रिकाएं, जो ज़्यादातर कॉमनली लोग पढ़ते हैं. उसमें आपको एकेडमिक कंटेंट और वो सब की ज़्यादातर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. ये वो है कॉमनली जो देखा जाए, जैसे कि आप हर घर में, हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर लाइब्रेरी में जाके देखें कि इस तरह की पत्रिकाएं हर लाइब्रेरी रखती हैं. इसमें जो भी कंटेंट होता है सिंपल होता है और आपका लैंग्वेज भी बहुत सिंपल होती है. जो सब्जेक्ट ज़्यादातर जो रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आजकल ट्रेंड्स के बेस पे चल जाता है कि आजकल क्या चल रहा है, कपड़ों में क्या पहन रहे हैं लोग, बात किसके बारे में कर रहे हैं, या आजकल ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उससे रिलेटेड होंगे. ताकि जो वट एवर इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट टू गेन फ्रॉम ऑल दिस स्मॉल थिंग्स, तो ये आपको इसी में मिलेंगी. इसकी लैंग्वेज इसीलिए सिंपल रखी जाती है क्योंकि कॉमन जो है, जनरल पब्लिक जो है हमारी, वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज कोई ज़रूरी नहीं है सबके पास है. तो ये कॉमन पढ़ने में आपको मदद कर लेता है, कॉमन चीज़ों को समझने में. इससे हम लोगों को ज़्यादातर क्या है, कॉमन पब्लिक इसे सूचित भी रहती है, शिक्षित भी रहती है, और ये कहीं किसी हद तक हमारा मनोरंजन भी करता है. क्योंकि इसमें कई तरह की स्टोरीज भी होती है, कई लोग अपना कुछ बीता हुआ होता है जिसमें उन्हें हंसी आई हुई होती है, या कुछ अच्छा हुआ होता है उनके साथ, या कुछ बहुत खराब हुआ होता है, विच दे रियली वॉन्ट टू शेयर विथ पब्लिक, जो वो समझते हैं कि हम सब लोगों को जानना चाहिए, या मैंने ये देखा है, फील किया है, समझा है, देख किसी ने मुझे बताया है. तो एक स्टोरी बना के इसे डाल दिया जाता है, तो बाकी लोगों को इसको स्टोरी समझ के पढ़ने में अच्छा लगता है, एंटरटेन भी हो जाता है. कभी कभी आप बोर हो रहे होते हैं तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं. और एजुकेट होने के लिए देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें इसमें उस तरह की भी डाली जाती है, ताकि आपको, जैसे हम लोग अभी 2 साल से कोविड के थ्रू गुजरे हैं, तो उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती, हर इंसान जो भी कर रहा था उससे बचने के लिए, ये केयर करने के लिए या प्रिकॉशन के लिए, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हर कोई डाल देता था कि मैंने ऐसे किया तो इससे ये हुआ, उससे ये हुआ. तो दैट वे वो इसे पॉपुलर भी बनाता है और इंटरेस्टिंग भी बनाता है. और कभी कभी यही वाली पॉपुलर पीरियडिकल्स जो हैं कॉमर्शियल पब्लिशर्स भी करते हैं, मगर R&D ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी करते हैं, पब्लिश करते हैं. जिससे कि जैसे कि अब हम कहेंगे एक साइंस रिपोर्टर है, तो उससे साइंस से रिलेटेड छोटी छोटी स्टोरीज उसमें आती हैं. आप देखेंगे तो मतलब 10-10 5-5 लाइन की एक एक स्टोरी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में, किसी भी नई इनोवेशन के बारे में. तो दैट पे वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देता है, एजुकेट भी करता है. विज्ञान प्रगति है दूसरी मैगजीन का नाम, साइंस की दुनिया है, ये सब भी है जो कि साइंस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, ये भी निस्केयर ही छपाती है. ये हमने पॉपुलर मैगजीन्स के बारे में बात की. अब हम बात करेंगे तो मैगजीन्स क्या है. मैगजीन तो आपको पता है, सभी लोगों को मालूम है, मैगजीन्स तो वो हैं जैसे कि न्यूज़पेपर जैसे रोज छपता है, इसी तरह से कॉमर्शियल पब्लिशर्स जो हैं वो मैगजीन्स को भी छपाते हैं। आप देखोगे हिंदू हमारे पास बहुत ही अच्छा एक न्यूज़पेपर आता है, तो वही लोग फ्रंटलाइन को भी छपाते हैं। तो फ्रंटलाइन एक मैगजीन है, मगर उसमें आर्टिकल्स इतने अच्छे होते हैं कि कभी कभी वो बहुत यूजफुल आर्टिकल्स डालते हैं। पॉलिटिकली पॉलिटिकल मैगजीन भी होती है वो, बट यूजफुल काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो न्यूज़पेपर्स छापते हैं वो मैगजीन भी छाप सकते हैं। ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन को, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, डेली रूटीन की जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी प्रमोट करता है। ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही तरह में मिल सकते हैं न्यूज़पेपर्स। कई जो है स्पेसिफिक भी है, देखा जाए आप तो, अगर हम कभी कभी इकोनॉमिक्स के बारे में जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है तो हम इकोनॉमिक टाइम्स को ही रेफर करते हैं, या हमें फिनांसिस के बारे में जानना है तो हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस को रेफर करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन उसमें डेप्थ में करते हैं, जिससे फिर वो एनालाइज भी करते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे ट्रेडिंग, बैंकिंग, कॉमर्स, ये सब रिलेटेड चीज़ें जो हैं ये इकोनॉमिक टाइम्स और आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस में मिलेंगी। ज़्यादातर आप देखेंगे जो भी मैगजीन्स हैं जो पब्लिश की जाती हैं, न्यूज़पेपर्स तो हम डेली पब्लिश करते हैं, वीकली भी होता है या बाई वीकली भी होता है, इनकी जो कवरेज है करंट इवेंट्स की होती है, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं इसमें, और हम सबसे रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इनका मेन जो कहेंगे आदेश क्या है, इनको इनका पर्पस क्या है, इनको ये है कि हम लोग मैगजीन्स के थ्रू जो है हर इंसान जो है एंटरटेन भी हो जाता है, इन्फ्लुएंस भी हो जाता है, प्रभाव भी हो जाता है हमें कि क्या हो रहा है। अगर हमने पढ़ लिया ये मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, उससे हम पे उसका थोड़ा इफेक्ट ज़रूर आता है। ज़्यादातर ये आर्टिकल्स कौन लिखता है, ये फ्रीलांस राइटर्स होते हैं, जैसे कि आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकती हूँ, कभी कभी जर्नलिस्ट स्टोरीज बना के डालते हैं, या कोई स्कॉलर भी डाल सकता है अगर उनके पास भी कुछ ऐसा छोटा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहते हैं। आप देखेंगे न्यूज़पेपर्स में बहुत अच्छे जहाँ पर आर्टिकल्स भी आते हैं, बहुत अच्छे मीनिंगफुल आर्टिकल्स होते हैं, और आप देखेंगे वहाँ पर एडिटर्स का एक कॉलम होता है जहाँ पर बहुत ही वेल रिनाउंड राइटर्स जो होते हैं, जर्नलिस्ट्स होते हैं, वो वहाँ पर अपने आइडियाज़ को, या वो जो कहना चाहते हैं पब्लिक से, या वो किसी चीज़ के बारे में कुछ अपने इंटरप्रिटेशन रखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे वो वहाँ पर ज़रूर आता है। और हर कोई जो एक्चुअल में न्यूज़पेपर पढ़ता है वो एडिटर कॉलम को ज़रूर देखता है, ज़रूर पढ़ता, उसे समझना इतना आसान भी नहीं होता है, बट अगर देखा जाए तो काफ़ी इंटेलिजेंट और अच्छे से लिखा गया होता है वो आर्टिकल। तो ये तो कॉमन जो डेली न्यूज़पेपर होता है, इसका मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ रिलेटेड टू योर काइंड ऑफ, अगर आप अपनी कंटेंट को बेटर करना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर से आप शुरू कर सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, उसमें स्कॉलरली आर्टिकल्स भी मिलते हैं आपको। ये ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं शॉर्ट ही रहते हैं, ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बना के इसे बोरिंग नहीं बनाते हैं, लैंग्वेज बहुत ही सिंपल रहती है, ताकि हम एक मिनिमम जो एजुकेशन लेवल है किसी का भी वो सभी इसको पढ़ सकें। हाँ, कई न्यूज़पेपर्स का लैंग्वेज काफ़ी थोड़ा टफ भी होता है, नॉर्मल अगर आप देखेंगे सिंपल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स ज़्यादातर होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं वो अलग से आप जानते हैं कि उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है अदर देन जो बाकी न्यूज़पेपर्स हैं। इसमें फोटोग्राफ्स, कलर्ड फोटोग्राफ्स भी रहती हैं, एडवर्टीजमेंट्स भी मॉडरेटली रहती है, क्योंकि उसी से इनको पैसा मिलता है, उसी से इसे जनरेट हो जाता है इनका फाइनेंसेस, और इस तरह से हम लोग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को पब्लिश करते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कॉमनली हम सब लोगों के घर में क्या आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब आप हमें ऑनलाइन भी मिलते हैं। अगर आप NIS की वेबसाइट पे जाएंगे, NIS की वेबसाइट पे जा करके एक आपको आइकन मिलता है दीप, जहाँ पर दीप में हमने फ्री न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स काफ़ी रखे हुए हैं। इस दीप के थ्रू आप अपने एनआईएस के रिसोर्सेज को भी पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। और जहां पर आपको डेली न्यूज़पेपर, मैगजीन और जर्नल्स का है, जहां आपके इंटरेस्ट की है, वो भी आप फ्रीली देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल रिपोर्ट्स की। टेक्निकल रिपोर्ट्स आपको मालूम है, किसी भी कॉन्फ्रेंस के बाद, किसी भी प्रोग्राम के बाद एक रिपोर्ट तो जरूर बनती है। तो एक जो रिपोर्ट होती है, ज्यादातर जो रिसर्चर्स रिपोर्ट निकालते हैं वो हम लोग टेक्निकल रिपोर्ट कहते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट्स जो रिसर्चर्स लिखते हैं वो रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद हो जाती है। रिसर्च एरिया पे बात होती है उसमें। मोस्टली जो देखा जाए टेक्निकल रिपोर्ट्स जो है फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होती है। ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, ज्यादातर इन्हें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज या कोई दूसरी एजेंसी है जो इन्हें स्पॉन्सर करती है, जो इन पे कभी ना कभी जो भी काम होता है उस रिपोर्ट का निकलवाने के लिए, राइटिंग करवाने के लिए। पर ये रिपोर्ट्स काफी यूजफुल रिपोर्ट्स होती हैं। जो भी रिसर्च करता है आपको इस रिसर्चर जो भी रिसर्च करता है किसी भी टॉपिक पे, उसी में ही कई बारी आप लोग क्या करते हैं, स्पॉन्सर्ड बॉडीज रिसर्च रिजल्ट्स को टेक्निकल रिपोर्ट्स के फॉर्म में निकाल के इसे सबमिट करती हैं एजेंसीज को। टेक्निकल रिपोर्ट भी एक तरह से देखा जाए तो एक प्राइमरी रिपोर्ट ही है, क्योंकि ये हम उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं जहां पर कि आपकी अभी रिसर्च चल रही है और या काम हो रहा है या कोई ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो ज्यादातर ये साइंस से रिलेटेड होती है। अब हम कॉन्फ्रेंस पेपर्स के बारे में भी बात करेंगे, जो थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। आपको पता है यूजुअली जो होता है साल में 6 महीने में हर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक गैदरिंग मीटिंग करती है जो कि स्पॉन्सर करती है। उसमें लर्न सोसाइटीज को, लर्न लोगों को बुला के उसमें क्या करते हैं हम, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। बेसिकली आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जिसपे प्रेजेंटेशंस होती हैं, जिसपे डिस्कशंस होते हैं, और यही सब जो हमने 2 या 3 दिन तक पर्टिकुलरली करके आखिर में हमारी जो जरूरत है, हमारी जो आउटपुट हमें चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको देख के हम एक रिपोर्ट जो बनाते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर जो छापते हैं, उस पे हम लोग फिर काम करते हैं कि ये जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स आए हैं, जो इससे रिलेटेड लोगों ने डिस्कशन किए हैं, हजारों लोगों ने बताया हमें कि इससे इस तरह की कई लोग, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और इससे रिलेटेड जो पेपर छपते हैं, प्रोसीडिंग्स निकलती हैं, और इन्हें एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज किया जाता है। क्योंकि डिस्कशंस के बाद में जो वहां से हमें आउटपुट मिलती है उसे हम यूज कर लेते हैं बाद में, जिसके बेस पे हम लोग आगे काम कर लेते हैं। कोई भी इंटरनेशनल, नेशनल जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, हर किसी कॉन्फ्रेंस का हम लोग एक पेपर उसके बाद निकलता है, कॉन्फ्रेंस पेपर जो होता है। फिर डिसर्टेशन एंड थीसिस जो है, ये भी एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। डिसर्टेशन आपको ज्यादातर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में भी डिसर्टेशन देते हैं, और थीसिस हम लोग पीएचडी में ज्यादातर देते हैं, पर कभी कभी ऐसा नहीं है, डिसर्टेशन थीसिस आपको पीएचडी में भी दे सकते हैं। अपने टॉपिक जो भी आपने लिया होगा, जिसपे आप काम कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है, जिसमें आप पर्पस, हाइपोथीसिस और हर चीज, उसकी आउटकम क्या है, आप क्यों कर रहे हैं ये रिसर्च, और आपने इस रिसर्च को करते करते कौन से मोड्स लिए हैं जिससे आपने इस रिसर्च को किया है, और किन किन लोगों को इन्वॉल्व किया, कितने लोगों को इन्वॉल्व किया, और आउटपुट क्या हुई, ये भी हम अपने थीसिस में लिखते हैं या डिसर्टेशन में लिखते हैं, अपने प्रोग्राम से रिलेटेड हमने क्या क्या हम किया, ताकि जो आगे जा करके लोग करने वाले हैं तो वो इसे रेफर कर सकते हैं और पता चल जाएगा कि ऑलरेडी इस पे ये काम हो चुका है। तो ये भी एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पेटेंट्स हैं। पेटेंट्स तो वो वाला डॉक्यूमेंट है जो ज्यादातर गवर्नमेंट इशू करती है, किसी इंडिविजुअल को भी कर सकती है, एक पर्सन को भी कर सकती है, किसी एक कंपनी को भी कर सकती है। ज्यादातर पेटेंट्स में एक इस तरह की इन्वेंशन होती है जो कि आपने किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड किया हो, या कोई आपने प्रोसेस ऐसा अपनाया जो कि बिल्कुल अलग था पहले जो हो रहा था उससे बिल्कुल अलग था और इसमें आपको बहुत फायदा हो रहा है, हो सकता है लोगों को, या आपने कोई डिजाइनिंग ऐसी कर ली है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हो गए कि पहले ज्यादा यूज हो रहे थे अब कम हो रहे हैं, या आपने आपके डिजाइन बढ़ाने से कुछ और चेंजेस आ गए जिससे कि बहुत फायदा हो रहा हो लोगों को। तो आपने अगर इस इन्वेंशन को, जब आपने इस ये इनोवेटिव आइडिया दिया है, तो इसे आप गवर्नमेंट के समक्ष रखते हैं और वो आपको इसमें पेटेंट ग्रांट करते हैं, तो ये आपका पेटेंट हो जाता है। इससे इसके बाद आपका नाम जो होता है वो एक गवर्नमेंट पब्लिकेशन आती है जिससे कि पेटेंट्स में रजिस्टर करने वाले लोगों के नाम आते हैं, जिसमें गेजेट ऑफ इंडिया है पार्ट टू और सेक्शन पार्ट थ्री एंड सेक्शन टू, जिसमें कि इस तरह के इन्फॉर्मेशन को लॉग इन किया जाता है, जहां से आपको पता चल जाता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये पेटेंटेड। जैसे कि हम लोगों को कहा, कई दिन पहले बात हुई थी कि हल्दी को लोगों ने पेटेंट किया, नीम को पेटेंट किया, क्योंकि हमारे पास थी तो हमने उसे कभी समझा नहीं कि इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, तो बाकी कंट्रीज ने उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा समझ ली। तो इसलिए अब हम लोग भी ये समझते हैं कि अगर नीम हमारे यहाँ पर है या हल्दी है हमारे यहाँ, अदरक का इस्तेमाल इस तरह से होता है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी पर, इन्हें भी पेटेंट किया जाता है। फिर इसके बाद है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स तो वो वाली चीजें हैं जहां पर आप देखेंगे जरूरत के हिसाब से एक स्पेसिफिकेशन दी जाती है, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, किसी न किसी बेस पे एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिस स्टैंडर्ड के बेस पे आप आगे जाकर के काम कर सकते हैं। वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि भाई यही है स्टेप्स, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप आगे के लिए काम कर सकते हैं। वो मटेरियल भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स के या प्रोसेस के भी हो सकता है, या कोई भी किसी तरह की सर्विस भी हो सकती है, जिसमें कि ये रिक्वायर्ड जो है, इन रिक्वायर्ड स्टेप्स जो हैं वो आपको लेना है। जो स्टेप वाइज हम लोग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए करते हैं, जिसमें हम कई सर्विसेज भी इन्वॉल्व होती है, इसमें दो तरह के है, एक फंडामेंटल स्टैंडर्ड है, एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है। फंडामेंटल स्टैंडर्ड जो है, फंडामेंटल स्टैंडर्ड ज्यादातर हम कहाँ पर यूज करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए, या बहुत तरह की एनर्जी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब देखा जाए तो क्वांटिफाइबल जिन जो जो क्वांटिटीज में आती हैं चीजें, इन्हें हमने फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स में रखा हुआ है। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो है वो ज्यादातर प्रोडक्ट से, प्रोसेस से, मटेरियल से और सर्विस से ज्यादातर रिलेटेड रहते हैं। किसी भी तरह की सर्विस दे रहे हैं आप, या कोई मटेरियल प्रोडक्शन है आपका, या कोई प्रोसेस है आपका, ये भी सारे जो है ये हमारे प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में ही आते हैं। सर्विसेज में हम लोग अगर देखा जाए, सेफ रिलायबल जो है सर्विसेज होनी चाहिए, जो कि हमारे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में आती हैं। ये ज्यादातर हम लोग कहाँ पर अप्लाई करते हैं, बिजनेस के लिए, बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखने के लिए, ताकि जो हमारी चीजें हैं ग्लोबली एक्सेप्ट हो। देखा आप अगर देखेंगे तो स्विच बोर्ड है, हमने एक तरह का स्विच बोर्ड यहाँ लगाते हैं, वही आपको किसी भी कंट्री में जाएंगे सेम ही आपको पिंस मिलेंगे, सेम ही आपको कई कई जगहों पे चेंजेस आते रहते हैं, तो उसे स्टैंडर्डाइज किया जाता है, ताकि हम लोगों की जो चीजें, जो तार की ब्रेथ विड्थ है या स्विचेस की है, कहीं भी किसी तरह के इस जो के कॉमनली चीजें यूज होती हैं, तो इसको स्टैंडर्डाइज करना जरूरी होता है। ये इसमें एग्जांपल जो है स्टैंडर्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट्स है, जो कि गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हर स्टैंडर्ड की एक एंट्री जरूर मिलती है आपको। वहां पर आपको ये पता चल जाता है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज किया गया है। फिर है ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन। ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी ज्यादातर पब्लिशर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, जो कि हमने अभी बात की थी, जो कि आपका टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में आता है, इसी तरह के लोगों के लिए ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन जो है ज्यादातर जो है मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। ये भी एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। तो अभी तक जो हमने बात की है वो हमने की सारी प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की है और होप आपने सब समझ लिया होगा प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत है, कितने इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।